हरे कृष्णा, आप सब भक्तजनों का मैं अभिनंदन करता हूँ। आज आप मंदिर में अपनी भगवद गीता की क्लास के लिए अपने टाइम से आए, कुछ लोग 7 बजे से भी आ रहे थे। कितने लोगों को SMS मिला था कि आज कौन प्रवचन देने के लिए आएगा और बाकियों को नहीं मिला। तो हम 8वें अध्याय के 6वें श्लोक पे हैं। यम यम वापि स्मरण भवम त्यजन्ते कलेवरम तम तम वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। यम यम जिस वा अपि किसी भी स्मरण करते हुए भावम स्वभाव को त्यजति परित्याग करता है, अंत में कलेवरम शरीर को तम वैसा ही एव निश्चय ही एति प्राप्त करता है। कौन्तेय हे कुंती पुत्र, सदा सदैव तत् उस भाव भावितः स्मरण करता हुआ। अनुवाद। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चय रूप से प्राप्त होता है। तात्पर्य बाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की यहाँ पर मृत्यु के समय अपना स्वभाव बदलने की विधि का वर्णन है। जो व्यक्ति अंत समय कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर त्याग करता है उसे परमेश्वर का दिव्य स्वभाव प्राप्त होता है। किंतु यह सत्य नहीं है कि यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ सोचता है तो उसे भी दिव्य अवस्था प्राप्त होगी। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए तो फिर कोई मन की सही अवस्था में किस प्रकार मरे। जितने शैतान बच्चे यहाँ स्टेज पे आ जाएं, महापुरुष होते हुए भी महाराज भरत ने मृत्यु के समय एक हिरण का चिंतन किया। अतः अगले जीवन में हिरण के शरीर में उनका देहांतरण हुआ। यद्यपि हिरण रूप में उन्हें अपने विगत कर्मों की स्मृति थी किंतु उन्हें पशु शरीर धारण करना ही पड़ा। निसंदेह मनुष्य के जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं। अतः इस जीवन से उसका अलग जीवन बनता है। अगर कोई इस जीवन में सतोगुणी होता है और निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है तो संभावना यही है कि मृत्यु के समय उसे कृष्ण का स्मरण बना रहे। इससे उसे कृष्ण के दिव्य स्वभाव की को प्राप्त करने की सहायता मिलेगी। यदि कोई दिव्य रूप से कृष्ण की सेवा में लीन रहता है तो उसका अगला शरीर दिव्य या आध्यात्मिक ही होगा, भौतिक नहीं। अतः जीवन के अंत समय अपने स्वभाव को सफलता पूर्वक बदलने के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करना सर्वश्रेष्ठ विधि है। ओम अज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मायं ददाति स्वपदांतिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछ कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये आठवें अध्याय के छठे श्लोक में स्वयं भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि मृत्यु के समय जिसका जहां ध्यान होता है वो उस स्थान को प्राप्त करता है। जब पिछली बार मैं यहां आया था तो आप में से कितने भक्तजन यहां थे, तो बाकी सब नए हैं या उस समय यहां नहीं थे, कितने पिछले छह महीने से आने शुरू हुए हैं, कुछ नए भी। तो भगवान कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। बहुत से लोग ये प्रश्न हमें करते हैं, हम संसार भर में प्रचार के लिए बहुत सारे देशों में शहरों में जाते हैं और बहुत से लोगों को ये पता है ज्यादातर जो हमारा प्रचार है वो नॉन हिंदू लोगों को होता है, जो लोग जिनका जन्म हिंदू परिवारों में नहीं हुआ। यहाँ तो मुझे लगता है लगभग 99% लोग ऐसे ही होंगे जिनका जन्म हिंदू परिवार में हुआ है, लेकिन हम सारे विश्व में प्रचार करते हैं और बहुत सारी जगह कोई बहुत ज्यादा हिंदू लोग हमारे प्रवचन सुनने के लिए नहीं आते। लोकल लोग जो कि क्रिश्चियन है या एथीस्ट हैं या बुद्धिस्ट हैं और कुछ मुस्लिम भी आते हैं। तो हम भगवद गीता का प्रचार हमारे लिए एक सबसे मेन एक्टिविटी है, इस्कॉन की सबसे प्रमुख एक्टिविटी भगवद गीता के संदेश का प्रचार है। और भगवद गीता के संदेश का प्रचार हम आध्यात्मिक दृष्टि से या आध्यात्मिक रूप से करते हैं, क्योंकि जब हम किसी कार्य को आध्यात्मिक रूप से या आध्यात्मिक दृष्टि से करते हैं तो वो धर्म निरपेक्ष होता है, उसमें धर्म से कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि जो हमारी आत्मा है उसका कोई धर्म नहीं, धर्म जो है वो केवल इस शरीर का है। और अगर जो आत्मा का कोई धर्म है भी तो वो फिर सबका सेम होना चाहिए, क्योंकि आत्मा सबकी सेम ही है, सबकी आत्मा एक ही स्थान से आई है। तो बहुत सारे देशों में बहुत सारे लोग ऐसा नहीं समझते कि हम हिंदू हैं या हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं, हम भगवद गीता का प्रचार एक स्पिरिचुअल दृष्टि से करते हैं। यहाँ पे सबको पता है कि स्पिरिचुअल या रिलीजन में क्या डिफरेंस है, या हिंदी में कह सकते हैं धार्मिक और आध्यात्मिक क्या डिफरेंस है, कोई बताएगा नहीं, खाली हाथ ऊपर, सब लोग एक साथ में हाथ ऊपर नहीं कर लो, एक एक करके हाथ ऊपर करने का, आध्यात्मिक और धार्मिक क्या अंतर है? अभी तो बताया शरीर और आत्मा, बस इतना। हाँ, वेरी गुड, ये प्रभु जी को माला दो, थैंक यू। जो धर्म है उसका संबंध हमारे शरीर से, ये शरीर पैदा हुआ है, अगर हिंदू परिवार में तो हम कहते हैं हम हिंदू हैं, अगर ये शरीर किसी ईसाई परिवार में पैदा होता तो हम कहते हैं हम ईसाई हैं, और किसी भी धर्म में के परिवार में हुआ होता तो हम कहते हैं वो धर्म। वो केवल इस शरीर के साथ संबंध है उस धर्म का, आत्मा के साथ संबंध नहीं है, क्योंकि इस आत्मा का उस परिवार से जिस परिवार में इस आत्मा का इस समय जन्म हुआ है, या जिस परिवार में इस आत्मा ने इस समय शरीर धारण किया हुआ है, उस परिवार से इस आत्मा का कोई सनातन संबंध नहीं है। वो टेम्पररी संबंध है। जिस दिन से ये शरीर में वो आत्मा ने प्रवेश किया और जिस दिन ये शरीर, जिस दिन वो आत्मा इस शरीर को त्याग कर देगी, उतना संबंध है। ना उससे पहले कोई और ना उसके बाद कोई। और अगर बाय चांस हो भी तो वो हमें पता चलने वाला नहीं है कोई उसका। तो बहुत से लोग हमसे ये पूछते हैं कि आप लोग हरे कृष्णा वाले या भगवद गीता के प्रचार करने वाले, आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, यू बिलीव इन रीइन्कार्नेशन, तो ये पुनर्जन्म कैसे होता है, मेरा पुनर्जन्म कैसे हो, किस तरीके का होगा, क्या आप बता सकते हैं? तो हम क्या बताते हैं उनको, जिस तरीके के आपके विचार होंगे, भाव होंगे, कर्म होंगे, इच्छाएं होंगी, भगवान उन सब इच्छाओं को पूरा करेंगे। क्योंकि भगवान असीमित हैं, भगवान के पास कोई सीमा नहीं किस चीज की। उनके पास जो क्रेडिट कार्ड है उसमें भी कोई लिमिट नहीं होती, प्लास्टिक वाला कोई लिमिट नहीं, और जो हम सोच भी नहीं सकते वो भगवान कर सकते। तो भगवान ने बहुत सारे अलग अलग शरीर, या हिंदी में कहते हैं योनि, बहुत सारी योनियां बनाई हैं। कितनी? 84 लाख योनियां, 84 लाख योनियों में सब में अलग अलग तरीके से अपनी इंद्रिय तृप्ति का रास्ता बताया गया है, दिखाया गया कि किस तरह से ये जीव, ये जानवर, पृथ्वी पर रहने वाला जानवर, पानी में रहने वाला जानवर, उड़ने वाला पक्षी, किस तरह से वो अपनी इंद्रियों को से सुख भोग सकता है। अलग अलग जानवर या अलग अलग स्पीसीज अलग अलग तरीके से सुख भोगते हैं। तो भगवान यहां भगवद गीता के ये पहले, दूसरे और तीसरे श्लोक में, इससे पहले वाले में भी यही बातों को बता रहे हैं। चौथे श्लोक में बताया कि भौतिक प्रवृत्ति के अधिभूत भगवान के विराट रूप नहीं। पांचवें में बताया कि जीवन के अंत में जो मेरा स्मरण करते हुए देह त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। उसके बाद बताया छठे में, हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। और सातवें में फिर लगभग यही बता रहे हैं कि तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा मन बुद्धि को मुझ में स्थित करके तुम निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त। अगले श्लोक में भी, आठवें में भी लगभग यही बात है कि हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचल भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है वह अवश्य मुझे ही प्राप्त करता है। चार श्लोकों में भगवान पूरी तरह से गारंटी दे रहे हैं, लगभग सेम बात की, सिमिलर, बहुत दूर नहीं है एक दूसरे से, कि मेरा भक्त मुझे प्राप्त होगा, जो जिसका स्मरण करेगा वो उसे प्राप्त होगा। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि यहाँ पर मृत्यु के समय अपना स्वभाव बदलने की विधि का वर्णन है। जो व्यक्ति अंत समय में कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर त्यागता है उसे परमेश्वर का दिव्य स्वभाव प्राप्त। किंतु यह सत्य नहीं है कि यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ सोचता है तो उसे दिव्य अवस्था प्राप्त होगी। कैसे? जब हम संसार में अलग अलग जगह प्रचार करने जाते हैं तो ये प्रश्न भी हमसे पूछा जाता है कि भगवान को प्राप्त कैसे किया जाएगा। आप भी भगवान को मानते हैं, हम भी भगवान को मानते हैं, आप ज्यादा गॉड कॉन्शियस हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवद गीता में भगवान ने क्या विधि बताई है? भगवान ने भगवान को प्राप्त करने की बहुत सारी विधि बताई है, लेकिन यहाँ एक विधि है कि बड़े आसानी से अंत समय में मुझे याद करो तो मुझे प्राप्त। तो फिर क्या जरूरत पड़ी है सारा जीवन हरे कृष्णा रटने की अंत समय में? अभी थोड़ी आया अंत समय, कौन सी गारंटी है कि आ गया? सारा जीवन तोते की तरह हरे कृष्णा करते रहो, वो तो जब आएगा अंत समय तो कर लेंगे। क्यों? जैसे कि हम अपने बच्चों को समझाते हैं कि बेटा एनुअल एग्जाम अभी नहीं भी आए तो भी साल के शुरू से पढ़ाई कर लो। अब ये नहीं कहते अरे अभी क्यों पढ़ रहा है, कौन सा कल एग्जाम है? कोई कहता है ऐसा अपने बच्चों से कि कल कौन सा एग्जाम है तेरा, बोर्ड का फाइनल, चल रख दे किताब, जिस दिन होगा एग्जाम देख लेना, खोल लेना इसको। और अगर कोई ऐसा करे तो कितनी पॉसिबिलिटी है, कितने चांसेस हैं कि वो बहुत अच्छे नंबरों से पास होने, कुछ बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन जिसने सारा साल पढ़ाई करी है वो फाइनल एग्जाम के एक हफ्ता पहले बीमार भी हो जाए तो भी वो फेल होके नहीं आएगा, क्योंकि सारा साल तो पढ़ाई की हुई है ना। एक हफ्ता नहीं भी करी फाइनल एग्जाम से पहले तो भी वो पास हो। तो ये जो हमारा अंत समय है ये एक बहुत बड़ी फाइनल परीक्षा है, क्योंकि जो एनुअल परीक्षा होती है चौथी है पांचवी आठवीं है दसवीं है, बच्चा फेल भी हो गया चल कोई बात नहीं अगले साल बैठ जाना, बहुत बुरी बात है, लेकिन फिर भी एक ही साल तो वेस्ट हुआ। और अगर ये जीवन वेस्ट हो गया तो फिर वही डाक के तीन पात, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, पूरा जीवन बेकार। जैसे कि हम कहते हैं बच्चों को अरे तुम्हारा साल बर्बाद हो जाएगा, यहां तो सारा जीवन बर्बाद होने वाला साल का। तो इसलिए हमारे परम गुरु श्री प्रभुपाद ये बताते हैं कि भक्ति में शुरुआत करने के लिए हमें अंत समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात, कुछ पता नहीं अंत समय कब आने वाला है। दूसरी बात, अंत समय में इतनी आसानी से भगवान का स्मरण होने वाला नहीं है। एक बार हम हरिद्वार गए तो वहां पे देखा कि एक परिवार के सिमिलर से दिखने वाले कुछ लोग व्हाइट कुर्ता पजामा पहने हुए साहब जाते हुए लोगों को हर की पौड़ी जाओ तो ब्रिज से साहब इस तरफ जहां मेन हर की पौड़ी है उस तरफ जा रहे होते, तो जाते हुए सबको कोका कोला की बॉटल बांट रहे हैं। सारे परिवार खड़े होके चार पांच छह सबको बड़े प्रेम से बुला बुला के कह कह के प्लीज कोका कोला की बॉटल खूब बांट रहे हैं। तो हमारे साथ में एक भक्त थे, उनको ये बात बड़ी अजीब लगी, कोका कोला की बॉटल बांट रहे लोग क्या बात है। तो उन्होंने जाके पूछ लिया क्या बात है तुम लोग कोका कोला की बॉटल बांट रहे हो। हमारे भक्त जरा धोती कुर्ता पहने हुए तिलक लगाए हुए किसी को जाके कुछ पूछ लें तो वो बताता है, ऐसा नहीं कहता कि आपसे क्या मतलब है, वो बताता है कि हाँ बात ऐसी है कि हमारे पिताजी का कल रात को देहांत हो गया। कि अच्छा आपके पिताजी का कल रात को देहांत हो गया तो आप कोका कोला क्यों बांट रहे हो। कि बात ऐसी है कि पिछले 35 साल से हमारी कोका कोला की एजेंसी है और परसों तक हमारे पिताजी वहां एजेंसी पे ही बैठते थे, तो कल जब वो अपने प्राण त्यागने वाले थे तो हमें सबको पता था कि आज ये जाने वाले हैं और हम सब भाई और हमारे सब बेटे भतीजे हम सब इकट्ठे हो गए उनके चारों ओर और हमने उनसे बहुत प्रार्थना की कि पिताजी दादाजी बोलो, बोले बाबा की जय, बोलो ओम नमः शिवाय, लेकिन वो नहीं बोले। क्या बोले? कोका कोला कोका कोला कोका कोला कोका कोला, खाली कोका कोला बोलते बोलते उनके प्राण। तो अब उनके प्राणों को शांति देने के लिए हम कोका कोला का वितरण कर रहे हैं। ये जरूर हमारे पिताजी की यही इच्छा रही होगी कि उनके नाम पे सबको कोका कोला की बॉटल मिले, इसलिए हम उनके नाम से कोका कोला की बॉटल बांट रहे हैं। तो ये जो घटना है इससे हमें क्या सूचना मिलती है, इसका क्या मॉरल है कि सारा जीवन जो कुछ हम करेंगे अंत समय में हमें वही याद आएगा, उसी तरीके की प्रवृत्ति हो जाएगी। उसी तरीके की बात दिमाग में आई। बहुत से लोग, मैं पर्सनली भी जानता हूं, कि उनके बच्चे केवल धन समझते हैं, धन के अलावा कोई और चीज को समझते नहीं है। धन ही सबसे बड़ी चीज है उनके लिए। धन के रास्ते में जो आए उसको निकाल के बाहर खड़ा कर दो कि पिताजी बहुत महंगे हो गए घर में रखने, अब इनको बहुत हो गया। और फिर वो हम लोगों से या हमारे साथ कोई साधु लोग, हमारे गुरुजी कोई साथ में हो तो वो बूढ़े बुढ़िया ये कंप्लेन करते बैठ के, देखो जी हमारे बच्चे तो हमें बोझ समझते हैं, हमें ऐसा करते हैं। क्यों? आपने सिखाया क्या है उनको सारा जीवन? केवल धन और माया तो सिखाया है ना। अगर वो ही सिखाया है तो फिर अब भुगतो, क्योंकि उनको धन के अलावा किसी चीज की वैल्यू करनी जब हमने नहीं सिखाई तो वो कहां से सीख के आएंगे। ऐसा नहीं मैं कहता कि 100% केसेस में ऐसा है, लेकिन जनरली मोर और लेस, क्योंकि हमें कोई वैल्यू नहीं है किसी और की। हमने सारा जीवन धन के अलावा किसी चीज को कोई मूल्य नहीं दिया तो फिर बच्चे क्या सीखने वाले हैं? यही मैं, किसी ने बताया 32 साल, लेकिन मैं पिछले 26 साल से कनाडा में रहता हूं और विदेश में रहते हुए अपने बच्चों को भारतीय संस्कृति में रखना, भारतीय संस्कृति के टच में रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इतना आसान नहीं होता हम लोगों के लिए, बहुत मुश्किल होता है। इंडिया में रहते हुए कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, वहां बहुत कोशिश करनी पड़ती है। और बहुत से लोग, क्योंकि वो यहां भारत में पले बड़े हुए हैं, उनके लिए कभी किसी ने कोई कोशिश की नहीं तो वो भी नहीं करते अपने बच्चों के लिए। और बच्चे पल के बढ़ के बड़े हो जाते हैं बिल्कुल लोकल अंग्रेजों की तरह, कोई कल्चर कोई संस्कृति उनको कोई बात समझ में नहीं आती। तो कुछ परिवार हैं ऐसे जो ये सब देखते हैं दूसरे लोगों के और ये कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी तरह से कम थोड़ा बहुत तो कुछ अपनी संस्कृति समझें और उसको थोड़ा बहुत कुछ फॉलो करें। तो एक हमारे गुप्ता जी हैं, काफी समृद्ध परिवार है और हमारे डोनर भी हैं बहुत अच्छे। तो करीब 15 साल की बात है, हमने देखा करीब 20 साल की बात है कि उनके बच्चे काफी भारतीय संस्कृति में काफी तेज हैं। यहां के बच्चे लगभग उनसे पीछे हैं भारतीय संस्कृति में, उनके बच्चों से। यहां तो ढूंढने से मिलती है लेकिन फिर भी इतना बैड नहीं है, लेकिन उनके बच्चे बहुत आगे हैं। उनको जरूरत नहीं पड़ती बच्चों को रिमाइंड करने की कि प्रभु जी आए जाओ प्रणाम करो। यहां हम किसी के जाते हैं चौथी बार कहने के बाद कोई बच्चा जाता है प्रणाम करने, इसलिए नहीं कि हमें प्रणाम की आवश्यकता है, हमें प्रणाम की आवश्यकता नहीं है, ये तो खाली उनकी अपनी संस्कृति है। हम नहीं प्रणाम ढूंढ रहे किसी का, हमें कुछ नहीं मिलता किसी से प्रणाम लेके, खाली संस्कृति का पता लगता है। तो वो बच्चे दौड़ते हुए आते हैं, पहले प्रणाम करेंगे फिर अच्छी तरह से 2 मिनट के लिए चाय पास में बैठेंगे, कोई बात करेंगे, देखेंगे किस चीज की यहां जरूरत है, क्या मैं ला सकता हूं, क्या चीज है क्या नहीं है, कुछ प्रभु जी के आगे रखा है इन्होंने खाया कि नहीं खाया, प्लीज प्रभु जी लीजिए। और छोटे छोटे बच्चे को, बहुत बड़े बच्चे नहीं, छोटे छोटे। तो हमने पूछा गुप्ता जी से कि गुप्ता जी कैसे आपके बच्चे यहां फल बढ़ रहे हैं और बिल्कुल भारतीय संस्कृति तो इनमें कूट कूट के भरी है। कि कहते हैं हाँ हाँ प्रभु जी, चाहते तो सब हैं कि उनके बच्चों को भारतीय संस्कृति मिले,
लेकिन वो भारत तो ले जाते नहीं अपने बच्चों को।
मेरे बच्चे तो हर साल दो बार भारत जाते हैं।
तो अपने आप से कुछ होने वाला नहीं है।
अपने आप से हम सोचें, अरे जब बुढ़ापा आएगा, एक दूसरे को भी लोग यही शिक्षा देते हैं आजकल, अरे क्या तो यंग है, क्या सर मुंडा के माला वाला लेके घूम रहा है, अभी कहां खेलने खाने के समय, बहुत जल्दी है, जब होगा बूढ़ा तब उठा लेना ये माला। एक हमारे कपूर साहब है वहां, बूढ़े तो हो गए और इच्छा भी बहुत है कि अब थोड़ा सा भगवान की सेवा में लग जाए। तो एक महाराज है हमारे नवगेंद्र स्वामी, शायद आप जानते होंगे, कुछ लोग नवगेंद्र स्वामी को, वो नहीं छोड़ते किसी को, वो बहुत स्ट्रिक्ट है, हम कुछ नहीं कहते लेकिन वो बहुत स्ट्रिक्ट है। तो खन्ना साहब को माला दी, उनको बहुत ट्राई करते 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 भी उनके वो उंगली पे माला नहीं चल रही, इसी तरह से उनकी उंगली माला को चला नहीं सकती। चलो कोई बात नहीं, खाली उंगली पे माला चलने से सब कुछ तो नहीं हो जाएगा। तो उनके घर में प्रोग्राम करने के लिए हम लोग गए, तो खन्ना साहब को बुला लिया आरती करने के लिए कि ये दिया है इसको ऐसे ऐसे घुमाओ और ये घंटी है इसको ऐसे ऐसे बजाओ। तो दिया ऐसे ऐसे और घंटी ऐसे ऐसे कुछ वो बेचारे कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे। महाराज ने देख लिया, पकड़ लिया उन्होंने, भाई देखो सबकी ये हालत होने वाली है, अगर जो बुढ़ापे का वेट करोगे यही होगा। देखो ये खन्ना साहब को, ना इनसे आरती हो रही है ना इनसे माला जपी जाती है। खूब बताया। तो ऐसे ही पॉपट में श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि भरत महाराज मृत्यु के समय एक हिरण का चिंतन कर बैठे। हिरण का चिंतन करने से क्या हुआ, हिरण का शरीर प्राप्त हो, लेकिन उनको स्मृति बनी रही। क्यों, सारे हिरणों को स्मृति बनी रहती है, उनको स्मृति बनी रही क्योंकि वो एक बहुत ही एडवांस्ड एग्जॉल्टेड डिवोटी थे, जो सारे जीवन में एक छोटी सी गलती बिचारे, लेकिन उनका बाकी का सारा जीवन बिल्कुल परफेक्ट राजर्षि की तरह, उन्होंने राम राज्य की तरह राज्य किया। ये सारे संसार के राजा थे महाराज भरत। महाराज भरत के नाम पे इस देश का नाम भारत है। इस देश का नाम भारत क्यों है, क्योंकि ये संसार को पहले भारत वर्ष कहा जाता था और महाराज भरत के राज्य से पहले इस देश को क्या कहा जाता था, या इस संसार को, इलावृत वर्ष। महाराज भरत के बाद इसको भरत वर्ष का नाम दिया गया। तो ये सारा भारत उनके नाम पर है, इस पे कई हजार साल तक उन्होंने राज्य किया और फिर सारा राज पाट धन दौलत शौहरत आराम की सब वस्तुएं, यहां तक कि कपड़े सब कुछ छोड़ के वो तपस्या के लिए। लेकिन क्या गलती करी, गलती ये करी कि उनके गुरु ने कहा था कि तपस्या के लिए या वन में निवास करने के लिए मेरे आश्रम में आ जाओ और तुम्हारे सब गुरु भाई लोग यहां आए, इनके साथ में अपने कार्य करो। महाराज भरत ने क्या किया, नहीं नहीं नहीं,
मैं अकेला ही ठीक हूं, और अकेला होने की वजह से जब वो हिरण के मोह में पड़ गए तो उनको चेक करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि अंत समय कब आ सकता है कौन जानता है। ये सतयुग की कथा है। उन दिनों लोगों की उम्र 1,00,000 साल हुआ करती थी। मनुष्य जैसे आजकल समझा जाता है 100 साल को जी गया बस बहुत हो गया, कलयुग में लोगों की उम्र करीब 100 साल, द्वापर में करीब 1,000 साल, त्रेता में करीब 10,000 साल और सतयुग में 1,00,000 साल। ध्रुव महाराज को सतयुग में भगवान ने ध्रुव लोक प्रदान कर दिया, उसके बाद भी उनको ये आज्ञा दी कि ध्रुव लोक जाने से पहले तुम अपने पिता का राज्य भोगो। कितने साल? 36,000 साल तक। 36,000 साल अपने पिता का राज्य भोगने के बाद तुम्हें ध्रुव लोक जाने को प्राप्त होगा। त्रेता में भगवान राम आए, भगवान राम ने राम राज्य किया। कितने साल? हाथ ऊपर करना, बताना नहीं। वो वाले प्रभु जी 11,000 साल, 10,000 साल, 1,00,000 वर्ष और उधर 10,000 और कोई 25,000, 36,000 और कोई। ये तो बहुत डाइवर्स आंसर्स हैं, ऑडियंस पोल लेना पड़ेगा। 5,000, 10,000, कितने लोग 10,000 वाले थे? 3 आंसर है। कितने लोग समझते 10,000 साल ऑडियंस पोल? 10,000 साल से कितने लोग सहमत हैं? 11,000 साल से, 25,000 साल, 36,000 साल, 1,00,000 साल? बहुत से लोग तो हाथ ही नहीं उठा रहे हैं। इसका मतलब कोई राइट ऑप्शन नहीं आई अभी। कब हाथ उठाएंगे? जो प्रभु जी ने सबसे पहले उत्तर दिया वो एक्सैक्ट उत्तर था, 11,000 साल। ये इन्फॉर्मेशन आपको रामायण में नहीं मिलेगी, क्योंकि रामायण में ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये श्रीमद् भागवतम में है। रामायण के अनुसार, रामायण एक ड्रामे की तरह है। रामायण के अनुसार ड्रामा ऐसे के ड्रामे में जो बीच का समय होता है जहां कोई बहुत बड़ा मेन इवेंट नहीं है उसको गायब कर देते हैं। खाली नीचे लिखा हुआ आ जाता है 3 महीने के बाद ऐसा हुआ, क्यों? मेन इवेंट तो है नहीं। रामायण जैसे हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं कि भगवान राम शिक्षा प्राप्त करके आए, उनको विश्वामित्र जंगल में ले गए, वहां जाके उन्होंने पूतना का वध किया और वहीं से वो आगे मिथिला चले गए, वहां पे स्वयंवर में उनका विवाह हो गया। उसके बाद वो वापस अयोध्या आए और अयोध्या आने के बाद क्या हुआ? महाराज दशरथ ने ये निर्णय कर लिया कि इसको राजा बना लेना चाहिए, या कम से कम राजकुमार, क्राउन प्रिंस, ऐसा ही है ना। लेकिन भगवान राम के देवी सीता को लेकर अयोध्या आने के कितने वर्षों के पश्चात ये निर्णय किया गया कि उनको नेक्स्ट राजा वो बनेंगे, ये घोषणा कर देनी चाहिए। किसी को पता है? लगभग 22 वर्ष। कौन बोला? वेरी गुड, वेरी क्लोज, 22, 25, 27 कुछ ऐसे, लेकिन वेरी क्लोज, 22 भी। किसी को ऐसा आइडिया था कि बीच में 22 वर्ष बाकी हैं? नहीं। और रामायण में ऐसा नहीं बताया गया कि देवी सीता का त्याग करने के बाद, लवकुश को प्राप्त करने के बाद लगभग पूरे 11,000 साल अभी बाकी थे, क्योंकि 48 साल में तो ये सब कुछ हो गया। अब 11,000 में से अगर 48 निकाल भी दिए तो क्या बचा? लगभग पूरे 11,000। कुछ फर्क नहीं पड़ता। 11,000 में से 48 निकाल के, तो लगभग पूरे 11,000 साल तक राज्य किया भगवान श्री राम ने। तो बहुत से लोग ऐसा पूछते हैं कि सीता निर्दोष थी फिर भी भगवान ने उनका त्याग किया, ये कैसा भगवान निर्दयी और अन्यायी, जबकि उनको पता था सीता निर्दोष है और सीता पवित्र है फिर भी त्याग किया। देवी सीता को वनवास दे दिया, कौन बता सकता है क्यों? यह इसका उत्तर क्या है? एक बार किसी ने देखा कि एक बहुत बड़ा जुलूस आ रहा है, आगे आगे एक कुत्ता है जिसने बहुत सारी ऐसी मालाएं जैसे मैंने पहनी हुई हैं और आगे आगे जा रहा है, उसके पीछे एक अर्थी भी है और पीछे बहुत लंबी लाइन है। तो उसने पूछा, अरे क्या हुआ? जो व्यक्ति सबसे ज्यादा आगे नजर आ रहा था कि क्या हुआ? तो कुछ नहीं, मेरी पत्नी को कुत्ते ने काट लिया तो वो मर गई, ये उसकी अर्थी है। ओ, एक दिन के लिए वो कुत्ता मुझे मिलेगा कि पीछे लाइन में आओ, वो कुत्ता आगे जो जा रहा है। उसका अर्थ क्या है? लोग ऐसा कहते हैं, समझते हैं, जानते हैं, कोशिश करते हैं या मजाक करते हैं, लेकिन वास्तव में कोई अपनी पत्नी को खोना नहीं चाहता। वास्तव में कोई गृहस्थ अपनी पत्नी को खोना नहीं चाहता, खास तौर पे जब उसको पता है कि ये गई तो दूसरी आने वाली नहीं है, तब तो नहीं कोई खोना चाहता। अभी ऑडियंस पोल ले सकते थे, लेकिन क्या करें, सबकी पत्नियां यहां मौजूद होंगी तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट सब हो जाएगा सबके सामने, किसी की पोल नहीं खोलेंगे। लेकिन ये बात गारंटी है कि कोई अपनी पत्नी को छोड़ने वाला नहीं है जब उसको पता हो कि मुझे दूसरी तो मिलने वाली नहीं है। तो भगवान ने 11,000 साल तक अकेले शासन किया और बिना पत्नी के। तो वनवास किसको हुआ? भगवान राम को हुआ या देवी सीता को? 11 वर्ष वनवास तो उन्होंने काटा, नहीं देवी सीता को नहीं हुआ। देवी सीता अपने लोक वापस चले गए, अपने धाम जहां पे सनातन रूप से भगवान राम के रूप में रहते ही हैं। जब वो अयोध्या धाम से, जो वैकुंठ धाम में अयोध्या धाम है वहां से वो आते हैं तो उनका अंश आता है, वो स्वयं नहीं आ जाते और वहां का स्थान रिक्त हो जाता। तो देवी सीता तो वापस अपने नित्य धाम उसी दिन चली गई, वापस भगवान राम के पास, लेकिन वो उनका अंश जो जिसको ये दोष दिया जाता है कि इसने सीता का त्याग किया, इसने अन्याय किया, सीता निर्दोष थी, वास्तव में वनवास तो उसने काटा। पत्नी के बिना सारा जीवन बिताना बहुत कठिन होता है, और वो भी एक राजा के लिए। कोई गरीब आदमी तो चल कोई बात नहीं, अपने ही पेट भरने को नहीं है क्या? राजा जिसके पास सब कुछ है लेकिन अपने लिए एक पत्नी भी नहीं। एनीवेज, आई थिंक हमारा टाइम हो गया है। कोई प्रश्न है किसी का? पहले माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच फॉर द वंडरफुल लेक्चर। कवि जी, मेरा प्रश्न है कि जो भारत महाराज जी थे वो एक बहुत एडवांस डिवोटी थे, तो फिर अंत समय में उनको हिरण की याद आई, तो उनको हिरण का शरीर क्यों मिला? वो तो इतने एडवांस डिवोटी थे, सारा टाइम तो उन्होंने भगवान को याद किया था।
वेरी गुड क्वेश्चन। कई सारे उत्तर हैं या प्रस्पेक्टिव हैं। नंबर एक, ये सतयुग की कथा है। सतयुग में आपको जो कुछ करना है, भगवान की प्राप्ति तपस्या से प्राप्त होगी। भगवान की प्राप्ति तपस्या के माध्यम से प्राप्त होती है। तपस्या के बहुत कड़े नियम हैं, और अगर हम तपस्या के कड़े नियमों पे खरे नहीं उतरते तो वो तपस्या सफल होने वाली नहीं है। कलयुग में ऐसा नहीं है कि हम सारा जीवन पूरी तरह से अपने गुरु के निर्देश के अनुसार बिताएंगे और एक अवज्ञा हुई और सब कुछ बेकार, ऐसा नहीं है। कलयुग में डिस्काउंट्स है। जैसे कि सतयुग में अगर कोई पाप कर्म हमारे मन में भी आ गया तो वो पाप काउंट हो जाता है, लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है, हमें डिस्काउंट है। वो पाप तभी काउंट होगा जब हम वास्तव में उसको जाके एक्सिक्यूट करेंगे, तब तक वो पाप काउंट होने वाला नहीं है। अपने मन में जितने मर्जी कर लो, उसका मतलब ये नहीं है कि हम एनकरेज कर रहे हैं कि मन में पाप करो, लेकिन शास्त्रों के अनुसार उसका फल नहीं मिलता, उस पाप को पाप नहीं माना जाता। सतयुग में केवल मन में आने से ही पाप हो जाता है। तो अलग अलग युग के अलग अलग स्टैंडर्ड हैं। दूसरा, भगवान की असीम कृपा थी, बहुत असीम कृपा थी कि वो हिरण का शरीर भी भगवान के सिस्टम ने उसको दे के भरत महाराज को उनकी स्मृति बनाई रखी। नहीं तो हिरण तो हिरण ही होता है, लेकिन ये हिरण अपने गुरु के आश्रम के चारों तरफ घूमता था, अपने गुरु भाइयों के साथ में खेलता था या उनको देखता था, और साधु संघ में सारा जीवन उसने बिताया, और तब उसको वास्तव में जिसको जड़ भरत कहते हैं वो वाला शरीर फिर से एक जन्म के बाद ही उसको एकदम से मानव शरीर प्राप्त हुआ, और तो भी उसकी स्मृति बनी रही तीनों जन्मों की। तो भगवान ने बहुत असीम कृपा की है भरत महाराज के ऊपर। इतनी असीम कृपा किसी को किसी के ऊपर की हो ऐसा सारे भागवतम में और कोई वृतांत नहीं है। लेकिन यहां चलो प्रभुपाद कहने की कोशिश कर रहे हैं कि तो भी भरत महाराज को भी एक जीवन हिरण का लेना ही पड़ा। तो हमसे अगर कहीं गलती से एक भूल सारे जीवन में हो गई तो वो हो सकता है माफ हो जाए, वेरी लाइकली। लेकिन कोई है जिससे एक भूल केवल हुई हो अभी तक? अब भूलों का खाता बंद कर दो और जो सही कार्य करने उनका खाता चलाए रखो, चालू खाता। क्या है सही कार्य? हरे कृष्ण महामंत्र का जप नियमित रूप से, अनर्थ निवृत्ति मतलब चार नियमों का पालन, साधु संग और भजन क्रिया, साधना भक्ति, भगवान में विश्वास, दैन्यता और चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी, स्माइल लाइक हिम, स्माइलिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट लाइक दिस प्रभु हुअर हियर, ही स्माइलिंग, सी स्माइल, स्माइल लाइक हिम, बी हैप्पी. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभु जी बिहाइंड. युग कौन सी? कलयुग, मैं बता रहा हूं, कलयुग 5000 साल बीत गए, खाली 27,000 साल बाकी हैं, तो टोटल होता है 4,32,000 साल. द्वापर 8,64,000 साल, त्रेता 12,96,000 साल, सतयुग 17,28,000 साल, कुल मिला के 43,20,000 साल. एक युग चक्र, एक युग चक्र के बाद दूसरा युग चक्र तभी स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, और कोई प्रश्न?
हरे कृष्ण प्रभु जी, हमें जो चैंटिंग करनी है माला से ही क्यों करनी है? माला से ही क्यों करनी है?
माला से
क्यों करनी है?
ओके, बहुत सारे रीजन है, मुझे तो इतना ज्यादा ज्ञान है भी नहीं, लेकिन जो दो चार मुझे पता है मैं बता देता हूँ. ओके, माला से ध्यान लगाने में सुविधा रहती है, माला से काउंट करने में सुविधा रहती है, माला से ये मुद्रा है, आप कहीं भी मुद्रा पढ़ोगे, देखोगे, सुनोगे या गूगल करोगे तो ये एक मुद्रा है, इससे इंटरनल क्लेंजिंग होती है, फिजिकल क्लेंजिंग, इंटरनल क्लेंजिंग. ये जो माला है और जप है, ये आपकी आत्मा की शुद्धि कर रहा है, आत्मा का शुद्धिकरण, और ये मुद्रा आपके शरीर का शुद्धिकरण, दोनों का शुद्धिकरण जरूरी है. और रीजन चाहिए? और प्रश्न? एक इधर भी है.
हाँ प्रभु जी, जो लोग कई रिलेशन में पूछते हैं, जो उनका सवाल है कि जो लोग लहसुन प्याज खाते हैं तो वो जब कर सकते हैं क्या माला से?
माला से जब कोई भी कर सकता है, चाहे कोई लहसुन प्याज खाता है, चाहे मीट मांस खाता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम कह रहे हैं कि जो लोग बिना मीट मांस खाए और जब कर रहे हैं वो मीट मांस खाना शुरू कर दें. माला के जप में हमारे गुरु महाराज श्री प्रभुपाद ने ऐसा बताया कि किसी को रुकना नहीं चाहिए या रोकना नहीं चाहिए. अगर जो अभी अनर्थ निवृत्ति नहीं भी हुई है, अनर्थ करते हुए भी आप जप कर सकते हैं, क्योंकि वो शुद्धि ही करेगी, शुद्धिकरण ही करेगी, तो धीरे धीरे वो इंसान अनर्थ निवृत्ति पे बढ़ने की भगवान की कृपा, भगवत कृपा प्राप्त होगी, तो अपने आप धीरे धीरे वो अनर्थ निवृत्ति की तरफ बढ़ेगा. अनर्थ निवृत्ति समझते हैं? मैं सब बार बार कह रहा हूं अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति. कितने लोग अनर्थ निवृत्ति समझते हैं? खाली दो चार ही, बस आप बाकी सबको समझा देना. अनर्थ का अर्थ है जो बेकार है, जिसका कोई यूज नहीं, यूजलेस। क्या चीज यूजलेस होती है? शराब पीना कोई यूज है? किसी की सेहत बनने वाली है उससे, पेट भर जाता है, कोई फायदा होता है? कुछ नहीं, बेकार है। मीट खाना बहुत अच्छी चीज है, हृदय में दया बढ़ने वाली है किसी का मीट खाके? नहीं, बेकार है, छोड़ दो। पर स्त्री का संग, पर पुरुष का संग बहुत अच्छी चीज है, उसके बिना रह सकते हैं हम? रह सकते हैं, छोड़ दो, त्याग दो। जुआ खेलना, कोई कभी जीता है, कोई कभी जुआ खेल के कुछ बन गया है, बेकार है, छोड़ दो। झूठ बोलना, ये सब उसी में आ जाता है। तो ये अनर्थ और इनसे निवृत्ति, मतलब इनका त्याग, वो है अनर्थ निवृत्ति। ठीक है, और पीछे किसी का प्रश्न था? क्योंकि भगवान का ऐसा विधान है, आप चाहो तो 100,000 साल की इच्छा है आपकी? अभी तो पहले ही इतने बहुत ज्यादा हैं, 100,000 का क्या करेंगे? श्रील प्रभुपाद की नित्य गौर प्रेमानंद।